चरण वल्लभा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन बंद हो गया यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनाचारी यमुना जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी श्लोक नंबर 43 तांबाणमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसारयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यान् प्रेम्णा राज्ञा निवारिता ताम्बाडमिति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसारियम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यान् प्रेम्णा राज्ञा निवारिता ताम्बाड्यमिति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसारयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यान् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः
Thank you.
ताम उन सबों को बाढ़म स्वीकृति इति इस प्रकार उपामंत्र्य बाद में सूचित करके प्रविश्य प्रवेश करके गजसारियम हस्तिनापुर के महल में स्त्री च अन्य स्त्रियां स्वपुरम अपने निवास यात्यन विदा होते समय प्रेमना प्रेम पूर्वक राज्ञा राजा द्वारा निवारित रोके गए। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा इस तरह श्रीमती कुंती की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक याचना की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में रोक नहीं सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि कुछ दिनों के लिए और रह जाएं कारगर सिद्ध हो गया। इससे पता चलता है कि महाराज युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम से बड़े हुए स्नेह की शक्ति थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेम शक्ति के द्वारा जीते जाते हैं, अन्य किसी के द्वारा नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सोच रहा था कि बरसात है इसलिए शायद कोई डिवोटी बाहर से नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एंथुसियाज्म है माता जी इसका भी कथा सुनने आने नहीं। विनय प्रभु आपको सीखना चाहिए इससे, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए लेक्चर, कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए मेरे कपड़े नहीं सूखे थे इसलिए मंगल आरती में नहीं आया। ये आपके पास रहेगा ना रिकॉर्डिंग, रोज सुनना इसका। कपड़े नहीं सूखे तो प्रसाद नहीं खाते हैं, प्रसाद खाते हैं हम, तो फिर मंगल आरती बहुत जरूरी। एक दिन मंगल आरती नहीं आई मतलब हम भगवान से एक कदम और आगे बढ़ने से रुक गए, मिस नहीं कर। प्रभुपाद जी बोलते थे बहुत सीरियसली, सुमंगल आरती में बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है तो बात अलग है, लेकिन अगर हेल्थ अच्छा है थोड़े इतने सूखे हों या गीले हों, अभी देखो ये लोग कई लोग बाहर से आए तो कपड़े गीले हो ही जाते हैं तो फिर भी आते हैं क्लास के। आपको शिक्षा लेनी चाहिए बिलो मंगल ठाकुर से। बिलो मंगल ठाकुर की कहानी मालूम है आपको? नहीं मालूम? बिलो मंगल ठाकुर हमारे सबके गुरु हैं, उन्होंने किताब लिखी कृष्ण करुणामृत है ना। तो वो पहले भक्त भक्त बनने से पहले तो पहले से ही भक्त थे, लेकिन लीला में भक्त नहीं थे। और वो रोज़ एक वेश्या से मिलने जाते थे, और एक दिन तो इतना उनका नियम पूर्वक जाना था कि एक दिन उनके पिताजी का श्राद्ध था। तो पिताजी का श्राद्ध था, वो बोले ठीक है श्राद्ध पूरा करूँगा लेकिन अपना नियम पालन करूँगा, साधना भक्ति ये उनकी साधना थी। तो जब रात को वो श्राद्ध वगैरह हो रहा था तो अपने पिताजी का श्राद्ध पुराणिक पंडित को बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो मुझे जाना है, और पुराने के बाद तुरंत निकल पड़े। लेकिन बहुत बरसात हो गई, जैसे आज हो रही है बहुत बरसात, इतनी बरसात कि नदी पार करके जाना था और नौका ही नहीं थी, कोई बोटमैन नहीं। बोला मुझे जाना जरूरी है। उन्होंने क्या किया, एक कुछ लकड़ी तैर रही थी, लकड़ी को उन्होंने ऐसे पकड़ लिया और नदी पार कर। और फिर वहाँ पहुँचे तो रात हो चुकी थी, वो चिंतामणि जो वेश्या का नाम था वो तो ऊपर सो गए थे। उन्होंने देखा अरे मुझे जाना जरूरी है, तो उन्होंने एक रस्सी लटकी हुई देखी, रस्सी पकड़ के अंदर आ गए खिड़की से। आशीर्वाद इतनी रात में आप आए, इतनी बरसात हो रही है, ये कैसे आया? बोले मैंने देखा कुछ तैर रहा था वो, और एक रस्सी पकड़ के आ गए, देखा था वो तैर रहा था, वो क्या था, वो एक लाश था, डेड बॉडी, और रस्सी क्या थी, प्लास्टिक का असली सांप था। तब उसने बोला अरे इस नश्वर शरीर, ये देह जो मल मूत्र और खून से बना हुआ है, किसी का भी शरीर हो, पुरुष का भी सकते नहीं, खाली स्त्री का शरीर तो वही चीज़ों का बना हुआ, इस देह मल मूत्र से बने हुए शरीर को भोगने के लिए तुम्हारा इतना उत्साह है, अगर इतना उत्साह कृष्ण के लिए होता, जगन्नाथ के लिए होता तो आपको कृष्ण मिल जाए। सोचा यस मेरे को भगवान उपदेश करें, सब कुछ छोड़ के इसको ज्वाइन, मतलब कृष्ण भक्त बन गया। बाद में ऑफकोर्स फिर से वो एक बार एक स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए, जा रहे थे तो उसके पीछे पीछे जाने लगे, वो अपने घर में चले गए उसके पीछे चले गए। उसके पति बाहर आए, बोले क्या चाहिए आपको? बोले मैं इसके साथ अकेले में रहना चाहता हूँ। पति बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो पत्नी को बोले इसको इच्छा को पूरी करो। और तब वो अंदर गए, फिर लगा अरे पहले एक आकर्षण से बचा, अभी दूसरा आकर्षण। तो बोला कि आप अपने मुझे वो पिन दो जो बाल के लगाने के होते, पिन दो। तो पिन दिया उसने, उसने अपनी आँखों को फोड़ दिया, ये आँखें जो है यही मेरे को भवसागर में बांध के रखते, इंद्रियाँ जो बाद में महान संत बन गए। वो आँखों से अंधे थे लेकिन वृंदावन में गए उनको भगवान के दर्शन हो गए। हमारे पास आँखें हैं, चश्मा भी है, कॉन्टैक्ट लेंस भी है, फिर भगवान नहीं दिखते। वृंदावन में आप जाते हो तो देखते हो बंदर चश्मा चुरा लेते। हम लोग यात्रा में गए थे, बंदर ने चश्मे चुरा लिया, तो हमको किसी ने बोला कि आप उसको बिस्किट दोगे तो वो वापस देगा। तो हमने बिस्किट दिए, चना दिया, तो धीरे धीरे आ गया, बिस्किट भी ले गया, चश्मा भी ले गया। और फिर बाद में एक और भक्त ने कुछ दिया तो उसने चश्मा वापस दिया, लेकिन कैसे दिया, ये जो चश्मा है ना इसका ऐसे ये लेके पूरा घुमा दिया 180 डिग्री, और ये चश्मे के दो एज निकाल के हाथ में दे दिए। ड्यूटी को बोला प्रभु जी वृंदावन में क्यों ऐसा हो रहा है? बोले भगवान दिखा रहे हैं कि मेरे को चश्मे के द्वारा नहीं देख सकते, मुझे देखना है तो प्रेमांजन चुरी तब भक्ति विलोचन, प्रेम का अंजन चाहिए, प्योर डिवोशन चाहिए, तभी हम भगवान को जान सकते। वही सूरदास थे, नहीं वो अलग थे ना, वो अलग थे, उनको भगवान के दर्शन। सूरदास भी एक और भक्त थे जो आंखों से अंधे थे, है ना, उनको है ना, उनको ही भगवान के दर्शन हुए। और एक भक्त है जो बरसाना में रहते थे, बरसाना में मोर कुटी देखे आपने, मोर कुटी दानगढ़ मानगढ़ भानगढ़ विलासगढ़, तो मोर कुटी के पास जो है वो एक संत रहते थे, अंधे थे, राधा रानी से प्रार्थना की कि मुझे आपकी आपके दर्शन चाहिए, आपकी लीला देखनी है, मोर लीला। एक बार ठाकुर जी जो है मोर बन जाते। क्या होता है कि कृष्ण भगवान जो है राधा रानी के थोड़ा रूठा देते हैं उनको, मान लीला। राधा रानी के पास कृष्ण जाते हैं कुछ लेसन सीखने, म्यूजिक लेसन, और जो राधा रानी बोलती है उसका उल्टा ही गाते हैं जानबूझकर। बोलते नहीं ऐसे नहीं, ऐसे गाने तो भगवान वैसे ही गाते हैं। तो बाद में भगवान के व्यवहार को देख के श्रीमती राधा रानी के समझ में आता है ये भगवान जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, मैं कृष्ण को नहीं देखूंगी, कोई नीला चीज़ भी नहीं, बादल भी नहीं, कृष्ण नहीं देखूंगी। तो कृष्ण बहुत कोशिश करते हैं राधा रानी को खुश करने के लिए, लेकिन राधा रानी रूठ जाती है, इसको मान लीला बोलते हैं। और अंत में कृष्ण मोर की तरह नृत्य करते हैं, कृष्ण मोर बन जाते हैं, राधा रानी प्रसन्न होते हैं, मोरनी की तरह नृत्य करते हैं। इसको बोलते हैं मोर मोर लीला। और वो संत को अंधे डिवोटी थे, उनकी इच्छा थी कि मैं ये लीला को देखूं। राधा रानी बोले ठीक है मैं आपको दर्शन दूंगी, लेकिन एक शर्त है कि आपको एक पेंटिंग बनाना होगा उसका। बोले पेंटिंग, मैं तो अंधा हूँ, मेरे पास पेंट नहीं है, कैनवस नहीं है, ब्रश नहीं है। राधा रानी ने कहा योग क्षेम वहाम यम, आई विल गिव एवरीथिंग। उसको दर्शन दिए और उसने पेंटिंग बनाई। आज वो पेंटिंग है उधर, देखे मोरकुटी के अंदर। आप गए नहीं मोरकुटी? कितने वक्त गए मोरकुटी में? मोरकुटी बहुत सुंदर है। पेंटिंग देखा होगा आपने? नहीं नहीं देखा पेंटिंग? फिर आप क्या बाहर से देख कर आ गए क्या? आप रेस्टोरेंट में गए और खाया नहीं आपने? यानी कोई बात नहीं, नहीं भी देखा तो जगह में जाने का भी लाभ मिलता। ऐसे उत्सुकता चाहिए। हमारी भक्ति कोमट भक्ति चल रही है अभी। हमारी भक्ति ऐसी है ना, तो इंग्लिश में बोलते हैं लुक वॉर्म। लुक वॉर्म का क्या मीनिंग होता है ना? लुक वॉर्म हिंदी में क्या बोलते हैं? मराठी में कोमट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुनगुना। यस, देवहरी प्रभु जानते हैं। आपकी ऐसी चल रही है ना, गुनगुना। मतलब क्या, कभी आए मंगल आरती, कभी नहीं आए, है ना, ऊपर ही रह रहे हैं लेकिन नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी हो जाए, बीमार भी हो, तो पीछे बैठ के चेयर में, लेकिन मंगल आरती अटेंड करें। डिटर्मिनेशन, मुझे मुझे जाना ही है, कृष्ण को प्राप्त करना ही, तभी कुछ चांस है भगवत धाम जाने का। नहीं तो ऐसे स्पीड से हम चल रहे हैं बैलगाड़ी की तरह, धीरे धीरे, चार कदम आगे दो पीछे। भक्ति के लिए तेजी से, तूफान की स्पीड से भगवान की ओर दौड़ना है। भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओ, भगवान आपकी तरफ कितने कदम रखेंगे? 100 कदम। भगवान के कदम का साइज क्या है? भगवान के पैर नंबर 9 या नंबर 8 में फिट नहीं होते। वामन नंबर, वामन नंबर, वामन देव। कोई बोलेगा ना कौन सा जूता चाहिए? वामन जूता। वामन देव का क्या साइज था चप्पल का? पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया ना। तो एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारी इच्छा ही नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। ये ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति के पास जाके हम बोल रहे हैं, कोई बोलता है प्रभु जी ये लो मैं आपको सोने देना चाहता हूँ, सोने के रिंग्स, थोड़े हीरे। बोलते नहीं, मेरा बैग बहुत भरा हुआ है, इतने कांच के टुकड़े भरे हैं, कैसे खाली करें मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे बाबा, सोना हीरा मिल रहा है, ठीक है आप बोलो थोड़ी जगह कर लेता हूँ आपको खुश करने के लिए, है ना, तो 100 ग्राम ले लेता। अरे बाबा 2-10 किलो सोना है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना जगह नहीं है। ठीक है आप बोल रहे तो 20 ग्राम के लिए जगह रख देता हूँ। मतलब साधु बोलते हैं अरे हरी हीरा लो, हरी नाम लो, भागवत सुनो। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे टाइम कैसे जा रहा है? इंद्र तृप्ति में जा रहा है। दिवस शरीर साजे मीछे निकाल के दे, रात को निद्रा में और दिन को शरीर को सजाने में, धन कमाने में, ऐसे हमारा टाइम बीत जाता है, आयु बीतती जा रही। लाइफ क्या है, जीवन क्या है? 100 साल मैक्सिमम। 100 साल क्या है? एक साल के 100। एक साल क्या है? 365 दिन। एक दिन क्या है? 24 घंटे। एक घंटा क्या है? 60 मिनट। एक एक मिनट गया यानी मृत्यु करीब आ रही है। हम ये सुनते हैं तो दूसरों को बताते हैं प्रभु जी मृत्यु आ रही है, नए लोगों को बताते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी भी आ रही है। मैं छोटा था तो बोलता था ये जवान लोग हैं और ये बूढ़े लोग हैं, दो जाति है जवान और बूढ़े, लेकिन भूल जाते हैं कि जवान व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है। अब इसे एनालाइज करना चाहिए, रोज डायरी लिखनी चाहिए, जैसे आपके यहाँ पे साधना कार्ड होता है, शास्त्र स्वरूप प्रभु जी सुपरवाइज करते हैं, कभी उठे साधना कार्ड, ये साधना कार्ड तो अच्छा है और उससे भी गहराई में जाना चाहिए। साधना कार्ड एक्सटर्नल है, वो भी जरूरी है, कम से कम मैंने मंगल आरती अटेंड किया, सोलहमाला जप किया, उसके बाद और एक इंटरनल साधना कार्ड, अंदर से क्या चल रहा है वो देखना चाहिए। मेरे हृदय में लस्टी डिजायर्स बढ़ रहे हैं, क्रोध बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रही है, वैष्णव अपराध हो रहा है, एनालाइज करना चाहिए, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गहराई से भगवान इंटेंसिटी होनी चाहिए, हम भगवान को याद करें, इतना भगवान के विचारों में मग्न होना चाहिए कि स्वप्नों में भी भगवान के विचार हैं। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी नींद में कैसे भगवान को याद करें आप बोल रहे हो? प्रभुपाद जी बोले, पहले जागते हुए करो, जागते हुए करो। इसी लिखा होता है, हम जगन्नाथ को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, वो जो जो चीज़ों को हम देखते हैं वो विचार हमारे मन में इम्प्रिंट हो जाते हैं। भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के नाम कीर्तन को सुनते हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। ये भक्ति योग शुड प्रे फॉर दैट ईगरनेस। प्रभुपाद के अंदर कितनी उत्सुकता थी प्रचार के लिए, नहीं आपको मान अपने पढ़ा है, दिल्ली में एक बार प्रभुपाद पुस्तक बांट रहे थे और एक बैल ने आक्रमण किया, आपने सुने, एक बड़ा हैवी बैल था और प्रभुपाद जी को बेहोश कर दिया उसने। एक बार प्रभुपाद जी सूर्य के गर्मी से गिर गए, प्रभुपाद जी सोच सकते थे अरे मेरे को क्या प्रचार करने की ज़रूरत है, जो आएगा आएगा, नहीं तो क्या, हम अपना वृंदावन में रहेंगे, राधे राधे करेंगे। प्रभुपाद जी संघर्ष करके दिखाते, तब बोलोगे प्रभु जी यहाँ पे वापी में ज़्यादा स्कोप नहीं है, प्रचार का ज़्यादा सेवा नहीं है, तो भी जितनी भी सेवा है करने का प्रयास करना, सेवा के लिए तरसना चाहिए, सेवा के लिए तरसना चाहिए, जैसे निर्जल के बाद कैसे हम प्रसाद के लिए तरसते हैं। मैंने कहानी बताई थी ना, यहाँ पे विनय प्रभु के साथ हम थे, एक बार निर्जल एकादशी किया था ना, और द्वादशी के दिन हम लोग प्रसाद के लिए कितने उत्सुक थे, सर ईगरनेस शुड बी देयर, कब मुझे कृष्ण मिलेंगे, कल शास्त्र स्वरूप प्रभु और दूसरे सब ब्रह्मचारी बहुत अच्छा एक बार क्लास ले रहे थे, मैं भी सुन रहा था, कि वृत्रासुर की कहानी बता रहे थे, वृत्रासुर का श्लोक पढ़ के सुना रहे थे, कि जैसे छोटे जो पक्षी होते हैं वो जो घोंसले के अंदर हैं वो इंतज़ार करते हैं कब हमारे मम्मी पापा वापस लौट कर आएंगे, है ना, मेरे को पूरे शब्द याद नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ है ना, छोटे पक्षी इंतज़ार करते हैं कब माता पिता वो बाहर गए दाना लाने के लिए कब आएंगे, जैसे जो बछड़ा होता है वो वेट करता है कब मैं अपने माँ का दूध लूँगा। और प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे, कई बार बछड़े को खींचने का भी प्रयास करते हैं तो भी वो भागते हैं, कभी रस्सी तोड़ के भाग जाते हैं माँ के थनों का दूध पीने के लिए। जो प्रभुपाद की वाणी है वो माँ का दूध है, तो बच्चे के लिए माँ का दूध ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाहर से हॉर्लिक्स और अमूल का दूध होगा वो छोटे बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता, उसको माँ का दूध चाहिए, तो प्रभुपाद की वाणी। हालांकि दूसरे संप्रदाय से भी हम ज्ञान लेते हैं, दूसरे बड़े बड़े साधु भी हैं, लेकिन हमें प्रभुपाद की पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह हमारा न्यूट्रिशन है। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर हर एक घंटा ब्रह्मचारी सब मिल के भाग ब्रह्मचारी क्लास में भागवत पढ़ते हैं। मैं दिल्ली में गया था तो वहाँ पे एक फ्लोर के ऊपर एक बिल्डिंग में चार पांच फैमिली रहते हैं और खाली माताएं मिलके 9 बजे उनके पति चले जाते हैं ऑफिस, अपने भौतिक ड्यूटीज़ ख़त्म करके, और 9:30 बजे से 12:30 तक वो चार पाँच माता जी मिलकर रोज़ भागवत पढ़ते हैं, रोज़ 3 घंटे। बच्चे थोड़े बड़े हो गए और पति बाहर रहे तो झगड़ा कम होता है, अच्छा है, शांत रहते हैं और फिर रोज भागवत पढ़ते हैं। स्केड्यूल बनाना चाहिए हर एक व्यक्ति को। सनातन गोस्वामी तो जब उनको भागवत पढ़ना था नवाब हुसैन शाह छुट्टी नहीं दे रहा था तो उन्होंने क्या किया, बीमार हो गए। यस, हम बीमार होते हैं ये बताने के लिए कि भागवत में नहीं आ सकते, वो बीमार होके भागवत पढ़ते थे, ये फ़र्क है थोड़ा। नहीं, वो बोलते हैं बीमार हूँ इसलिए भागवत पढ़ना है, हम बोलते हैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ रहा। दैट ईगरनेस शुड बी देयर। तो आपको भगवान मिल जाएंगे, एक जन्म में भगवान के दर्शन हो सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि एक ही जन्म में भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान से बातचीत कर सके। आफ्टर ऑल यही ड्यूटीज हैं, यही विग्रह है। शुद्ध भक्त देखते हैं तो उनसे भगवान से बातचीत कर सकते हैं। वृंदावन में वो कहानी है साक्षी गोपाल की, है ना। साक्षी गोपाल वो दक्षिण भारत से साउथ इंडिया से दो ब्राह्मण आए थे, एक नौजवान ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण, सुना आपने कहानी। नौजवान ब्राह्मण सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रा में ले जाते हैं, और बूढ़े ब्राह्मण बोलते हैं मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले मुझे कुछ देना नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी विवाह मेरे पुत्री के साथ। बोलते नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं। बोले ठीक है आप स्वीकार करो, मैं तो बहुत गरीब हूँ अनपढ़ हूँ और तुम बहुत पढ़े लिखे हो और बहुत धनशाली हो, विवाह बराबरी में होना चाहिए। तो भी अब बूढ़े ब्राह्मण के बोलने पर स्वीकार कर लेते हैं। और जब घर लौट के ब्राह्मण बताते हैं अपने परिवार वालों को, हाँ वो मूर्ख अनपढ़ ब्राह्मण के साथ हमारी बेटी का विवाह, हमारी बहन का विवाह कराओगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये भी एक ट्रिक होता है बोलने का, मैं करता नहीं है। कई बार घर में झगड़ा होता है तो पति बोलते मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर बस स्टैंड से वापस आ जाते हैं। एक ट्रिक होता है, मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है अभी क्या करूँ,